शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ
ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को हर मुरली में भिन्न भिन्न रीति से बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, और जो बट्ठी चल रही है उनको भी यही लक्ष्य दिया गया है, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अंतिम पुरुषार्थ। अंत में और कोई याद ना आए सिवाय एक बाप के, तो उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, और बेहद की वैराग्य वृत्ति लाने का सहज उपाय क्या है? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि देखना और सुनना हमारे हाथ में तो है, लेकिन फिर भी हम किसी को रोक तो सकते नहीं हैं। वो जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, हम उनको रोक तो सकते नहीं हैं। तो इसीलिए हम न देखें, हम न सुने, तो ये दो कदम ऐसे हैं जिससे सहज ही बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है। तो आज बाबा ने इस पर खास जोर दिया है, और दूसरा बाबा ने कहा है कि देखो भगवान पर कितना दोष धरते हैं लोग, कितने प्रकार के दोष धरते हैं। सबसे बड़ा दोष यही धरते हैं कि भगवान सुख भी देता है, दुख भी देता है, और भगवान कहता है मैं तो कभी दुख नहीं देता हूँ। कौन पिता अपने बच्चों को दुख देगा? लेकिन ये भगवान के ऊपर बहुत बड़ा दोष है, इसीलिए बाबा कहते हैं इस दोष को हम कैसे खत्म करेंगे। हाँ, बाबा को कभी भी शिकायत ना करें, हाँ बाबा ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, जैसे कि बाबा ने किया है। कोई ऐसे करता है तो कहेंगे ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाबा ने तो किया ही नहीं। तो इसीलिए दोष किसका, इतना बड़ा विनाश होगा तो किसका दोष होगा? कोई देहधारी मनुष्य का थोड़ी दोष होगा, वो इस वैज्ञानिक ने किया या इस राजनेता ने किया, नहीं। बाबा कहते हैं उसका दोषी कौन होगा? ड्रामा। अब ड्रामा पर आप क्या इल्जाम लगाएंगे, ड्रामा को कौन सी सजा देंगे? मनुष्य हो तो उसको सजा भी दे, लेकिन ड्रामा पर तो कोई को तो सजा दे ही नहीं सकते, तो इसीलिए ड्रामा। और दूसरा फिर बाबा कहते शंकर। अब शंकर को भी चलो सूक्ष्म वतन में, वो यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ तो है नहीं तो उनको सजा कैसे देंगे? क्योंकि अगर शंकर निमित्त है विनाश के लिए तो फिर उसको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन शंकर तो इस सृष्टि का वासी नहीं है, वो तो सदा सूक्ष्म वतन का वासी है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी का भी दोष नहीं होगा, कोई भी इसके लिए दोषी नहीं बनेगा, ये सब ड्रामा में नोंद है। तो दुख भी भगवान नहीं देते, वो तो हर एक का अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब है। तो आज बाबा ने बहुत गहराई से ये बात कही है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 22/5/2025 है। मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, कुछ भी नया नहीं है इस दुनिया में, ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है? लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं है, लगाया भगवान पर दोष। हाँ, वैसे जब हम कहते हैं ना प्राकृतिक आपदाएं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, लेकिन कई समय से ये गॉडली कैलमिटीज है, ये ईश्वरीय आपदाएं है, ये सब ईश्वर ही करा रहा है। जो आपदाएं भी होती है वो आपदाओं में तो बहुत दुख होता है, तो ईश्वर कैसे दुख देगा अपने बच्चों को। तो बाबा कहते हैं तो मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है इतना बड़ा जो विनाश होना है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। इतना बड़ा विनाश होगा सारी दुनिया का मनुष्य समझते भगवान ही कराता है। दुख भी वो देता है सुख भी वो देता है, ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है भगवान पर। बाप कहते हैं बच्चे मैं तो सदा सुख दाता हूं, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता, अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वो तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं नहीं कराता हूं। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। अब इस गीत में कितनी गहराई है, रात के राही कौन, फिर रात कौन सी, थकना क्यों नहीं, कहाँ दिन में जा रहे हैं, तो सारी सारा लेक्चर हो जाएगा इसी पर। तो बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी, ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, मुख खुलेगा। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर है, रात की यात्रा पूरी होती है ना, रात के राही थक मत जाना, तो अभी रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधेरे में धक्का खाना होता है, आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हैं, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। रात की यात्रा पूरी हुई, अभी दिन की यात्रा पर आए हो। ये यात्रा एक ही बार करते हो, तुम जानते हो याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक बनते हैं और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते उनको कहा जाता है स्वर्ग, और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं तो इसको कहा जाता है नर्क। अभी तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है, जो और कुछ बोल नहीं सकते वो सिर्फ ये याद रखे। अब इतना ज्ञान नहीं दे पाते हैं तो बाबा कहते हैं और कुछ बोल नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो, तो सिर्फ ये याद रखे कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी ये है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ, भल यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि में ये रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, अब ये भी तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है, सारे शरीर भी पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वो पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उसमें जव तिल आदि सामग्री डालते हैं, स्वाहा करते हैं, यहाँ तो विनाश होना है। हाँ, केवल जव तिल घी नहीं इस यज्ञ में, पर तो यहाँ तो विनाश ही होना है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं, कराते बाबा, लेकिन उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहीं भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए ये सब ड्रामा में नूंद है। इसलिए शंकर को बिठा दिया, फिर शिव शंकर को एक कर दिया, और शंकर तो इस सृष्टि पर आता ही नहीं है, तो दोष कैसे धरेंगे। तो इसलिए बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूंद है, यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं। रचयिता और रचना को कोई नहीं जानते, न जानने के कारण क्या बन गए हैं, रचयिता रचना को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं, कोई मालिक ही नहीं है, कोई धनी ही नहीं है, कोई घर में बाप नहीं होता है और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं। देखो कैसा वंडर, करोड़ों मनुष्य और किसी का धनी धोनी नहीं, नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं, देश देश आपस में दुश्मन बनकर लड़ते रहते हैं, एक ही घर में बच्चे बाप के साथ पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं, दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाप कोई दुख रचते हैं, मनुष्य समझते हैं ये दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके, उनको कहा ही जाता है सुख दाता, तो फिर दुख कैसे देंगे, जबकि है ही सुख दाता तो दुख कैसे देंगे। बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं, एक तो अपने को आत्मा समझो, सुखी बनना है तो पहला कदम है अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी, हम आत्माओं के रहने का स्थान वो परम धाम है जिसको शांति धाम भी कहा जाता है, ये अक्षर ठीक है, शांति धाम उसको कहते हैं, ये अक्षर ठीक है, स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे, परम धाम शांति धाम ये स्वर्ग को नहीं कहेंगे, ये उस परम धाम के लिए कहते हैं, तो स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे, परम माना परे ते परे, सबसे दूर परम धाम। हाँ, परम के कई अर्थ है लेकिन एक ये भी अर्थ है बहुत दूर, परम माना परे ते परे, स्वर्ग तो यहाँ ही होता है, मूल वतन है परे ते परे, सबसे दूर जहाँ हम आत्माएं रहती है। सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो, हाँ सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो, जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा ये है बिल्कुल रॉन्ग, ये भगवान ही कह सकता है ना, कोई कहे स्वर्ग पधारा और भगवान कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग, स्वर्ग तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ जाएगा, अभी है ही नहीं इस समय स्वर्ग, तो कैसे गया स्वर्ग, कैसे जाएगा, अभी तो है कलयुग, इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी, एक ही घर में, कैसे कलयुगी है, एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, तो बच्चा ज्ञान में चला लेकिन बाप ज्ञान में नहीं चलता है, तो बच्चा तो संगम युगी हो गया और बाप कलयुगी हो गया। स्त्री संगम युगी और पुरुष कलयुगी, स्त्री चल पड़ी ज्ञान में पर पति उसका नहीं चलता है तो वो तो कलयुगी और वो संगम युगी हो गई स्त्री। तो बाबा कहते हैं कितना फर्क हो जाता है फिर, स्त्री ज्ञान लेती पुरुष ज्ञान नहीं लेता तो एक दो को साथ नहीं देते, साथ नहीं देते, वो कहेगा चलो पिक्चर पर चलो, चलो क्लब में चलो, चलो फलाने जाओ, कि नहीं नहीं हाँ मुझे तो बाबा को याद करना है, मुझे तपस्या करनी है, तो कैसे मेल होगा। तो एक दो को साथ नहीं देते, घर में खिटखिट हो जाती है, स्त्री फूल बन जाती है और पति हाँ पुरुष कांटे का कांटा रह जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों आओ, दोनों दोनों पहिए समान हो तो जोड़ी अच्छी लगती है और गाड़ी भी ठीक चलती है। तो बाबा कहते हैं स्त्री फूल बन जाती है और वो कांटे का कांटा रह जाता, एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन उसका बाप कहता है शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। बहुत ऐसे कुमार बैठे होंगे जिनकी ये समस्या होगी, पिता कहता है नहीं शादी कर, बाबा कहते हैं अब शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो, पिता कहेगा। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, अभी की पवित्रता, क्यों पवित्र बनो, क्योंकि अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी, ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनकी एफिजी जलाते हैं ना, तो रावण से दुश्मनी है हमारी इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। जैसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, ये काम विकार से भी ये दुश्मन है, हमको नरक में ले आया तो कितनी घृणा होनी चाहिए सभी विकारों से। परंतु ये किसको मालूम ही नहीं कि रावण कौन है, बहुत ही खर्चा करते हैं दशहरे पर, रावण बनाते हैं ना, केवल अकेला रावण नहीं, फिर उसके साथ कुंभकर्ण भी, फिर उसके साथ मेघनाथ भी है, तो वो भी तीनों ही बनाते हैं, तो तीनों इतने बड़े बड़े हर साल और बड़े बड़े बनाते जाते हैं। यहाँ माउंट आबू में भी पहले रावण घाट है, ये नकीले के पास छोटा सा घाट बना, वहां जलाते थे छोटा सा, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा बनाते गए तो अभी पोलो ग्राउंड में जाओ तीनों को जलाते, तो देखो रावण पर खर्चा कितना करते हैं तीनों को जलाने के लिए हर साल, तो कितना खर्चा करते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं कि रावण कौन है, बहुत ही खर्चा करते हैं। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, कोई डेड बॉडी को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, स्वर्ग में शरीर डेड बॉडी को कैसे जलाते हैं, बाबा कहते हैं वहां बिजली में रखा और खत्म, बिजली में तो एक मिनट में हो जाता है ना, तो बिजली में, और वहां भी सब सोलर ही होगा तो सब सोलर में सब चलता है, लकड़ी की भी लकड़ी के खर्च की भी जरूरत नहीं है, तो वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां ये ख्याल नहीं रहता कि इनकी मिट्टी काम में आए, यहाँ तो करते ना भाई उनकी जो फूल निकले, राख निकली या जो भी अस्थियां निकली वो जा करके हम बहा के आए हरिद्वार में या काशी में, जो कुछ भी काम, तो बाबा कहते सतयुग में ऐसे नहीं होता, तो वहां ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात ही नहीं रहती है ना, जब इंदिरा गांधी ने शरीर छोड़ा था, नेहरू ने भी शरीर छोड़ा था, तो उनकी राख लेकर के हवाई जहाज से कैसे नदियों में डाला था ताकि ये धरती में, भारत की धरती में मिल जाए सारी राख, ऊपर से जैसे वो डाला था। तो और राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी की जो राख लेकर के हिमालय पर्वत पर गए थे और वहां से कैसे वो गंगा में जैसे बहा दिया, वहां गंगोत्री में, तो बाबा कहते हैं वहां ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती, इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं माँ में कम याद करने का पुरुषार्थ करो, ये याद करने की ही युद्ध है, हमारी कौन सी युद्ध है, याद करने की युद्ध। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो, माया कहां नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना, तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है, वो याद को तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, वहां कहां कहां मन भागा, मन का भी चार्ट, कर्म का चार्ट केवल नहीं, मन का भी चार्ट, कहां मन भागा, डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी ये तो अच्छा बहादुर है, अभी चार्ट रखेंगे और जांच करेंगे तो फिर माया भी देखती ना, ये तो बहुत अच्छा बहादुर है, अपने पर बहुत अच्छा अटेंशन रखता है, पूरा पैरा रखना है। हाँ, तो पूरा पैरा रखना है माया से, नहीं तो माया कुछ वो सुन लेती है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। ये कोई उन सन्यासियों माफिक नहीं है, वो तो भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। सन्यासी कभी घर में खाना नहीं पकाते, ना जो असली सन्यासी होते हैं उनको तो जो उनके शिष्य है वही उनको पहुंचाते हैं, या वो ही जाते, कई ऐसे सन्यासी वो भी घर घर जाते हैं वही मांगते हैं। तो वो भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम तो हठ योगी हो, राज योग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं, हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। कनिष्ठ बन गए तो कोई काम के नहीं रहे, अब हम क्या बनते हैं? हाँ, सोचो तो सही, कनिष्ठ से कितना उत्तम, अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता है, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी तक एग्जाम दिया नहीं, डिग्री मिली नहीं है, तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाबा कहते उस समय मर्तबा नहीं मिलता है, इम्तिहान पास किया मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे, खाली पढ़ाकर छोड़ थोड़ी देंगे, ऊंचते ऊंच पद भी देंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं सो समझा दिया है, बाबा ने सब समझा दिया है, मैं जो हूं जैसा हूं। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। तो तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है, उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, ये पहले थोड़ी पता था आपको भी। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे, फिर जरूर आएंगे तो सही ना, फिर आएंगे अगले कल्प में, क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे विनाश में, जो भी क्रिश्चियन है वो भी सब जाएंगे, सब जाएंगे क्राइस्ट के, सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी, जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक है वो अब तमो प्रधान है। ये भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं तत्त्वम। तुम भी ऐसे ही तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनते हो तत्त्वम। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए, विराट रूप के चित्र का अर्थ भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से अपतित बनी है, तब कहते हैं हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। ये भी पॉइंट्स बाबा कहते हैं धारण करने के लिए, जो भी बाबा सुनाते हैं ये सब पॉइंट्स धारण करने के लिए। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, मुक्ति धाम को शांति धाम भी कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है, यहाँ है दुख का बंधन। जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे, तो जीवन बंधन जीवन संबंध, तो जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे, अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो ये नशा होना चाहिए, इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर रही है, इतना ऊंचा पद पाने लिए वो पद हमें मिलना है, तो बाबा कहते उतना नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, जगत अम्बा नंबर वन में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे जैसे मम्मा ने किया, हम भी फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, संगम युग पर जो माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, वो भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। यहाँ माता पिता के दिल तख्त नशीन, तो भविष्य में राज्य तख्त नशीन। दिल पर वो चढ़ते हैं, अब कौन मम्मा बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, मम्मा बाबा के दिल पर वो चढ़ते हैं जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं, सेवा सेवा हाँ सेवा में बिजी रहते हैं। तो सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है, खास रक्षाबंधन पर तो बहुत, जब भी किसी को बांधने जाएंगे पहले तो पैसा तैयार करके रखते हैं लिफाफा कि ये हम देंगे। तो बाबा कहते हैं वो समझते, सबको पैगाम देना है बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। हाँ कई समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारी आइए हमसे पैसा मांगने के लिए, तो बाबा कहते हैं उनको कहो हम तो ये कुछ लेते नहीं है। ये वो समझते हैं ये राखी बांधने आती है कुछ देना पड़ेगा, तो उनको बोलो हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दो और कुछ नहीं चाहिए, 5 खोटे पैसे चाहिए आपसे, ये 5 विकारों का दान दो, ये दान लेने लिए हम आए हैं, खोटे पैसे दान लेने लिए आए हैं। इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाप को याद करो पवित्र बनो तो यह देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी ले नहीं सकते हैं, हम वो ब्राह्मण नहीं है जो ऐसे ही चंदा लेंगे या वो दक्षिणा लेंगे, हम वो ब्राह्मण नहीं है, हम वो ब्राह्मण नहीं है। हम सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे, अभी कोई कला नहीं रही, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना तो जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण, ब्राह्मणों को देते ना तो हम ब्राह्मण है तो उनसे क्या दान लेना है, दे दान विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना, बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो, 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, अब वापिस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा कि अभी वापिस जाना है। वो है ऊंच से ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है, अपना शरीर नहीं है। अच्छा फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, अच्छा ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर है ब्रह्मा विष्णु शंकर को साक्षात्कार होता है, परंतु बाबा कहते वो मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर है पर वो जो सूक्ष्म वतन है वो मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है, खेल सारा तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांदी नहीं है तो नाटक भी काय का होगा, नाटक तो वहाँ चले जा मंच हो ना, रंग मंच हो, उसकी बतिया हो, अब परमधाम में तो बतिया ही नहीं है, वो तो स्वप्रकाशित धाम है परमधाम, और सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ते फरिश्ते हैं, तो वहाँ भी नाटक नहीं है। तो बाबा कहते हैं वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांदी नहीं तो नाटक भी काय का होगा, ये बहुत बड़ा मांडवा है इस सृष्टि पर, ये बहुत बड़ा मांडवा है, पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होता, पुनर्जन्म सूक्ष्म वतन में नहीं होता, केवल स्थूल वतन में होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है, अभी पता पड़ा है क्या पता पड़ा अभी कि हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग माना विकारी मार्ग, विकारों में जाना शुरू हुआ तो वो वाम मार्ग कहलाया। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, वो कभी विनाश नहीं होता। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे भी वो, सब नहीं मानेंगे ये बातें हमारी, लेकिन कौन मानेंगे ये बातें जो हम सुनाएंगे, तो ये तुम्हारी बातें मानेंगे भी वो जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। अगर कल्प पहले नहीं माना होगा वो मानेंगे ही नहीं। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे, ऐसे नहीं हाँ सतयुग में तुम जाकर महल बनाएंगे, ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका कोई समुद्र के नीचे है और वो निकल आएगी वो सोनी द्वारका, ऐसे नहीं। वो तो वहां तो बनाना पड़ेगा ना सारा सोने की दुनिया। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते हैं, तो सतयुग में कैसे थालियां भर करके मिलेगी, मिलेंगे रत्न, सब सागर देगा ना, सागर भी देगा पहाड़ भी देंगे, सब वापस सब भर्तु हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो दिखलाते सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है सारी ज्ञान की बातें, तो ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भर भर के देते हैं। रोज कितनी थालियां भर भर के मिलती है ज्ञान रत्नों की बाबा की मुरली से। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई तो कथा क्या थी, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। फिर शंकर के लिए क्या कहते हैं, भांग धतूरा पीता था, भांग धतूरा पीता था शंकर। फिर उनके आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो हमको धन दो, हाँ झोली भर दो धन दे दो। तो बाबा कहते एक तरफ दिखाते वो भांग धतूरा खाता था नशे में रहता था और फिर कहते धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानी कर दी है। सबसे जास्ती ग्लानी तो किसकी की है, शंकर से भी जास्ती ग्लानी किसकी की है, शिव बाबा की ग्लानी हाँ सबसे जास्ती। ये भी खेल है जो फिर भी होगा, ये नाटक, इस नाटक को कोई भी जानते नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। ये भी जानते हो कि ऊंच से ऊंच बाप है, विष्णु सो ब्रह्मा ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं ये कोई समझ न सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। क्यों बने हो ब्राह्मण, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तो तुम्हारी दिल में है, ब्राह्मणों की दिल में क्या है, हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, है ना। हम सबके दिल में ये सब बातें कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी अपने लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। अब इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है, देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे होगी। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व का मालिक बनते हो, बाहुबल वाले हाँ बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और योग बल वाले विजयी बन जाते हैं। तो बाहुबल वाले तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व का मालिक बनते हो और बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी है ना, अपने घर जाना है। कितनी देर में पहुंचेगी परमधाम आत्मा, इतनी कितनी तीखी है। आत्माएं तीखी है ना, देखो अभी जो एरोप्लेन ऐसे निकले हैं जो एक घंटे में कहां से कहां चले जाते हैं, इतने फास्ट एरोप्लेन है, सुपरसोनिक रॉकेट्स जो के कितना जल्दी दौड़ते हैं। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है, चाहे कितना भी वो फास्ट हो, रॉकेट हो, कोई भी साइंस का यंत्र हो, लेकिन आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में, चपटी या एस को चपटी कहते हैं, चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ा भारत में और जन्म लिया विलायत में, और उसको कितनी देर लगी उसको विलायत में पहुंचने में, एक सेकेंड। इस तो बाबा कहते चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखी रॉकेट है, सबसे तीखी रॉकेट। और क्या विशेषता है इस तीखी रॉकेट की, बाबा कहते हैं आत्मा सबसे तीखी रॉकेट है, इसमें मशीनरी आदि की भी कोई बात नहीं है। वो जो रॉकेट होता है उसमें कितनी मशीनरी होती है, कितनी मशीनें, विज्ञान की क्या क्या उसमें होता है, और अगर कुछ फेल हो जाए तो खत्म। पर आत्मा को कोई मशीनरी भी नहीं चाहिए, पेट्रोल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती है। अब इसमें मशीनरी आदि की भी कोई बात नहीं, शरीर छोड़ा और ये भागा। आत्मा तो पंछी है ना, आत्मा को कहते आत्म पंछी। तो पंछी को कोई मशीन चाहिए क्या, वो तो उसको तो पंख है, तो आत्मा भी ऐसे पंख है ना, उनको फट से आत्मा उड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ा और ये भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि भी है कि हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब तुम पावन बनकर जाएंगे याद के बल से, और बाकी सब बाबा कहते हैं सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती है वहां, तो गर्भ महल में तो आराम से रहते हैं। हाँ, वहां सजा नहीं मिलती, गर्भ जेल में तो भी सजाएं मिलती है। सत्युग में गर्भ जेल ही नहीं तो गर्भ महल में तो सजाएं नहीं है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कोई गंध की बात ही नहीं है। हाँ, कोई गंध की बात नहीं, इतनी सफाई होती है सत्युग में, कोई गंध की बात ही नहीं। एकदम जैसे रोशनी हो जाती है, बच्चा पैदा हुआ सत्युग में, श्री कृष्ण पैदा हुआ, रोशनी रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए, दाल भात सबसे अच्छा है, दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। हाँ, कोई पैसे, कोई कैसे होते हैं, एक ही जगह से लिया, बस जो मिला बस वही खाते हैं। तो बाबा कहते सन्यासी, ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। हाँ, कोई कैसे अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, मात पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पांच विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। वरदान, सेंस और इसेंस। सेंस माना ज्ञान और इसेंस माना योग। सेंस में तो बहुत समझ और इसेंस माना बस बिंदु। तो सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, और ज्ञान की पॉइंट्स समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। यह है इसेंस, सार, इसेंस। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। उसका विस्तार, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ये भी श्रेष्ठ है। पवित्रता माना ब्रह्मचर्य केवल नहीं, हाँ ब्रह्मचर्य भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उनके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। बोल भी हमारे मर्यादा पूर्वक हो तो बाबा कहते हैं मर्यादा पूर्वक हो तभी उनकी पवित्रता कहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज थोड़ा जल्दी पूरा किया है।